आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 4, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस चैप्टर की समरी दे देती हूँ और उसके बाद हम चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड करना शुरू करेंगे। ये चैप्टर है एक आदमी जिसका नाम है हॉरेस डेनबी, उसके बारे में। हॉरेस डेनबी को एक अच्छा और ईमानदार सिटीजन समझा जाता था। वो लगभग 50 साल का था और उसकी शादी नहीं हुई थी। वो ताले बनाया करता था और अपने इस कारोबार में वो बहुत सफल भी था, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। हॉरेस डेनबी हर साल एक तिजोरी को लूटा करता था। इस तरह वो इतना पैसा चुरा लेता था कि 12 महीनों तक का गुजारा हो सके। वो चुपके से बुक्स खरीदता था जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। यानी हॉरेस डेनबी को एक शौक था बुक्स पढ़ने का। उसने डकैती के लिए इस बार शॉर्ट ओवर ग्रेंज का घर चुना था। 2 हफ्तों तक वह बारीकी से इस घर को जांच करता। उसने कमरे, बिजली की तारें, रास्ते और मकान के बगीचे का पूरा तरीके से छानबीन कर ली थी। फिर वो घर में घुसा। तिजोरी ड्राइंग रूम में थी। वहां टेबल पर फूलों का एक बड़ा कटोरा था। हॉरेस के नाक में उससे गुदगुदी शुरू हो गई और उसने छींकना शुरू कर दिया। अचानक ही उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक औरत की थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी और वो जवान और सुंदर थी। उसने लाल कपड़े पहन रखे थे। उसने कहा कि वह समय पर आ गई थी, लेकिन उसे एक लुटेरे से मिलने की कोई भी आशा नहीं थी। उसने उसे बताया कि वो घर की मालकिन है और उसने आगे कहा कि आज रात को उसे पार्टी में कुछ गहने पहनने हैं। वह उन्हें लेने के लिए ही वहां आई थी, लेकिन वो तिजोरी को खोलने का नंबर ही भूल गई। उस औरत ने कहा कि अगर वह उसके लिए तिजोरी खोल दे तो वो हॉरेस को जाने देगी। हॉरेस ने अपने दस्ताने उतारे। उसने तिजोरी को 1 घंटे के अंदर अंदर खोल दिया। उसने गहने उस औरत को दे दिए। फिर हॉरेस वहां से चला गया और 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन उसे एक पुलिस वाले ने शॉर्ट ओवर ग्रेंज के गहनों की चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया। उसकी उंगलियों के निशान कमरे में सब जगह मिले थे। उसने बिना दस्ताने पहने तिजोरी जो खोली थी। उसने पुलिस को बताया कि मकान मालिक की पत्नी ने उसके लिए तिजोरी खोलने को कहा था, लेकिन मकान मालिक की पत्नी सफेद बालों वाली एक 60 साल की औरत थी। उसने कहा कि डेनबी की कहानी बिल्कुल बकवास है। डेनबी के सामने कोई चोरों के सम्मान के बारे में बात करता तो अब उसे गुस्सा आने लग जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी को लाइन टू लाइन रीड करना शुरू करेंगे। आप सभी पेज नंबर 20 पर आइए। चैप्टर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? ये कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर जैसा ही सोचना चाहिए, पर यह भी कहा जाता है कि चोरों में भी सम्मान होता है। आप जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन सी बात सच है उसे पता लगाइए। रीड एंड फाइंड आउट। व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेनबी को क्या इकट्ठा करना पसंद था? व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? हर साल वो चोरी क्यों किया करता था? Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a shopkeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. हर कोई ये सोचता था कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। वो करीब 50 साल का था और अविवाहित था, यानी उसकी शादी नहीं हुई थी, और वो एक हाउसकीपर यानी एक नौकर के साथ रहता था जो उसकी हेल्थ को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। दरअसल हॉरेस अक्सर बिल्कुल ठीक और खुश रहता था, सिवाय इसके कि उसे गर्मियों में एलर्जी हो जाती थी जिस वजह से वो बीमार हो जाता था। वो ताले बनाया करता था और अपने इस कारोबार में इतना सफल भी था कि उसे दो हेल्पर भी रखे हुए थे। हाँ, हॉरेस डेनबी अच्छा और सम्मानीय तो था, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. 15 साल पहले हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा एक जेल के पुस्तकालय में काटी थी, यानी जेल की लाइब्रेरी में उसने ये सजा काटी थी। हॉरेस को एक्सपेंसिव और रेयर किताबों से प्यार था, इसीलिए वो हर साल एक तिजोरी को लूटा करता था। हर साल वो बहुत सावधानी से योजना बनाता कि वो क्या करेगा। बस इतना ही चुराता कि 12 महीने काफी रहे और एक एजेंट की हेल्प से उन किताबों को चुपके से खरीद लेता जिन्हें वो प्यार करता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange. Looking at its rooms, its electric wiring, its paths, and its garden. This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. जुलाई की चमकीली धूप में अब चलते हुए उसे पूरा यकीन था कि इस साल की डकैती वैसे ही सफल रहेगी जैसे बाकी साल रहती आई है। 2 हफ्ते तक वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज के उस घर का पूरा एनालिसिस कर रहा था जिसमें इस बार वो डकैती करने वाला था। वो कमरों को देखता, इसकी बिजली की फिटिंग को, इसके रास्तों को और बगीचों को देखता रहा। आज दोपहर दोनों नौकर जो ग्रेंज में रहते थे, जिनका बाकी का परिवार लंदन में होता था, फिल्म देखने के लिए गए हुए थे। हॉरिस ने उन्हें जाता हुआ देखा और वह बहुत खुश हुआ। बस उसके नाक में एलर्जी के चलते थोड़ी गुदगुदी हो रही थी। वह बगीचे की पिछली दीवार से आया, उसके औजार सावधानी से एक थैले में उसकी पीठ पर बंधे हुए थे। There was about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If I sold them one by one, he expected to get at least 5. चलिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 21 पर आइए। 1,000 enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. ग्रेंज की इस तिजोरी में करीब 15,000 पौंड के आभूषण रखे थे, यानी उसके गहने रखे थे। अगर वो एक एक करके उन्हें बेच दे तो करीब 5,000 पौंड उसे मिल जाने की उम्मीद थी, जो उसे एक साल तक और खुशी के साथ रख सकते थे। पतझड़ में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स बिकने के लिए आ रही थी। अब उसे वह पैसा मिल जाएगा जिससे वह उनको खरीदना चाहता था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. उसने घर के रखवाले को दरवाजे की चाबी को रसोई घर के दरवाजे के बाहर एक खूंटी पर टांगते हुए देख लिया था। उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाजा खोला। वो हमेशा बड़ा सावधान रहता था कि कोई भी उसकी उंगलियों के निशान ना देख पाए, यानी कहीं भी उसकी उंगलियों के निशान ना रहें। A small dog was lying in the kitchen. Its head made a noise and moved its tail in a friendly way. रसोई में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। वो हिला, थोड़ी आवाज की और फ्रेंडली तरीके से अपनी पूंछ को हिलाने लगा। All right, Sherry, Horace said as he passed. All you do, had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. हॉरिस ने कहा, सब ठीक है शेरी, और वो वहां से गुजर गया। डॉगीज को खामोश करने के लिए आपको जो करना पड़ता है वो है उन्हें उनके सही नाम से पुकारना और उन्हें बहुत सारा प्यार दिखाना। The safe was in the drawing room. Behind a rather poor painting, Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. But they took up too much room. In a small house, books were better. तिजोरी ड्राइंग रूम में थी, वो भी एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे। हॉरिस ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि उसे किताबों की बजाय क्या पेंटिंग इकट्ठी नहीं करनी चाहिए? लेकिन वह बहुत जगह ले रही थी। एक छोटे से घर के लिए किताबें ही बेहतर रहेंगी। There was a great bowl of flowers on the table, and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. मेज पर फूलों की एक बड़ी सी कटोरी थी और उसकी वजह से हॉरिस के नाक में गुदगुदी होने लगी। उसे एक हल्की सी छींक आई और फिर उसने अपना बैग रख दिया। उसने बहुत ही सावधानी से अपने औजारों को लगाया। नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. तिजोरी को खोलना कोई मुश्किल नहीं था। आखिरकार हॉरिस ने अपना सारा जीवन इन्हीं तालों और तिजोरियों के बीच ही तो गुजारा था। चोरी से सतर्क करने वाला अलार्म बहुत बेकार सा बना हुआ था। इसकी तार काटने के लिए हॉरिस हॉल में गया। वो वापस आया और जोर से छींका क्योंकि फूलों की स्मेल उसे फिर से आई। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. Horace ने सोचा कि लोग अपने पास कीमती सामान रखते ही क्यों हैं? वो कितने मूर्ख हो जाते हैं उन्हें रखते हुए। एक मैगजीन में दिए गए लेख में इस घर के सभी कमरों की सारी जानकारी बताई गई थी और इस कमरे की तस्वीर भी थी। लेखक ने यह भी जिक्र कर दिया था कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी भी छिपी हुई है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. लेकिन हॉरिस ने पाया कि फूल उसके काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। उसने रुमाल से अपना चेहरा छिपा लिया। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" फिर उसे दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी। ये क्या है? जुखाम या एलर्जी? Before he could think, Horace said, "Hay fever." And found himself sneezing again. इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हॉरिस ने कहा एलर्जी और उसे फिर से छींक आ गई। The voice went on. You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease. I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. और जो पर्सन वहां खड़ी थी उन्होंने फिर से कहा, आप इसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। देखो, अगर तुम ये पता लगा पाओ कि किस पौधे से तुम्हें ये बीमारी होती है। मेरे ख्याल से आप किसी डॉक्टर से मिल लेते अगर आप अपने काम को लेकर गंभीर हो तो। मैंने अभी अभी आपकी आवाज घर के ऊपर से सुनी। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 22 पर आइए। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबी? हॉरेस डैनबी से कौन बात कर रहा है? हु इज द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में असल गुनहगार कौन है? चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टोरी पर वापस आइए। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद द फर्मनेस इन इट। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. ये एक शांत और बड़ा ही काइंड स्वर था, यानी जो आवाज थी वो बहुत ही शांत और बहुत ही काइंड थी, लेकिन इसमें एक शक्ति भी थी। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी और शेरी उसके साथ खुद को रगड़ रहा था। वो जवान थी, काफी खूबसूरत और लाल कपड़े पहने हुए थी। वो अंगीठी तक चलकर गई और वहां जाकर गहनों को सीधा किया। डाउन शेरी, शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। शी स्माइल्ड एट हॉरिस एंड वेंट ऑन। हाउएवर आई केम बैक just in time, though I didn't expect to meet a burglar. इतने में उस औरत ने कहा, शेरी नीचे बैठ जाओ। कोई भी यह सोचेगा कि मैं एक महीने से बाहर गई हुई थी। वो हॉरिस को देखकर मुस्कुराई और फिर बोली, लेकिन मैं समय रहते आ गई, पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात एक चोर से होगी। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट One of the family. हॉरिस को कुछ होप थी क्योंकि वह उससे मिलकर खुश लग रही थी। अगर वो उससे ठीक से व्यवहार करे तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सकता है। तो हॉरिस ने कहा, मुझे उम्मीद न थी कि परिवार का कोई सदस्य मिल जाएगा। She nodded.
I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do?
उन्होंने सिर हिलाया और फिर उस औरत ने कहा, आपको मुझसे मिलकर कितनी असुविधा उठानी पड़ी है वो तो मैं देख ही रही हूँ। आप क्या करने जा रहे हो?
Horace said, My first thought was to run.
Horace ने कहा, मेरा पहला इरादा तो भाग जाने का था।
Of course, you could do that, but I would telephone the police and tell them about you. They would get you at once.
इस पर उस औरत ने कहा, हाँ हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर देती और उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती हूँ। वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे।
स्टूडेंट्स, नीचे दी गई पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको हॉरस डेंट भी नजर आ रहा है, जो अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है। उसे पसीने भी आ रहे हैं और साथ ही साथ उसे एलर्जी भी है, तो उसने हाथ में एक हैंकी भी पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर वो लेडी है जो हॉरस डेंटबी से बात कर रही है, और साथ ही है शेरी। स्टूडेंट्स, आप टेबल के ऊपर वो फ्लावर्स भी देख सकते हैं जिससे हॉरस को एलर्जी हो गई है, और टेबल पे ही उसने अपने औजार रखे हुए हैं, और वहां पर जो पेंटिंग है उसके पीछे सेफ है यानी तिजोरी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 23 पर आइए। हॉरस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द फोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस। I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough.
हॉरिस ने कहा कि यकीनन ही पहले तो मैं टेलीफोन की तारे काट दूंगा, और फिर वो हिचकिचाया। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। फिर उसने कहा, मैं श्योर करूंगा कि कुछ समय तक तुम कुछ भी ना कर सको, कुछ घंटे काफी होंगे।
She looked at him seriously.
You would hurt me? उस औरत ने उसे गंभीर होकर देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे?
Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that.
हॉरिस रुक गया और फिर उसने कहा, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने ये कहा था।
You didn't frighten me.
लेकिन उस औरत ने बोला कि तुमने मुझे डराया तो नहीं।
हॉरिस suggested, It would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go.
हॉरिस ने सुझाव दिया कि अच्छा रहेगा कि तुम मुझे भूल ही जाओ, कि तुम मुझसे कभी मिली भी थी। मुझे जाने दो।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉरिस को अब वहां से भागने की जल्दी है। हॉरिस का प्लान उसे फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर वो औरत हॉरिस के साथ बातों में लगी हुई है। हॉरिस के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या ये औरत अब मुझे फंसा देगी। स्टूडेंट्स, आगे स्टोरी में क्या होता है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है कि आपको यहाँ तक इस सारी स्टोरी को पढ़कर आना है। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।